मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। आज 7 जनवरी 2021 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। हमारे जो कुरियन साहब रहे हैं, मेरे समझे कुरियन साहब ही कहना ज्यादा बेहतर होगा, उनके जीवन के छोटे छोटे उन टुकड़ों से जो हम सब के सामने हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में यूं कह लीजिए कि एक तरह का मार्गदर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, 1921 के 26 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, राइट। खैर, चलिए हम इस पर नहीं जाते। जब वो 19 ईयर्स की एज में ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इन्होंने भी ग्रेजुएशन कर लिया, साइंस से ग्रेजुएशन किया और फिजिक्स इनका सब्जेक्ट था। इसके बाद उन्होंने बकायदे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब आप देखिए कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं। बकायदे उन्होंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया टेनिस में, सोच के देखिए, बैडमिंटन में, क्रिकेट में और बॉक्सिंग में भी। चारों खेलों में वे बकायदे अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो चार खेल थे, इन चारों खेलों में से किसी भी एक खेल को वे अपने कैरियर के रूप में चुन सकते थे। और हो सकता है कि उनके मन में ये बात आई भी हो, उन्होंने कुछ कोशिश भी की हो, बहुत स्पष्ट इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई है, ठीक है। अब आप देखें कि वो फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और वहां बकायदे वे इतने गेम्स में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं, बल्कि वो जो उस समय यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर था उसमें भी शामिल हुए और उसमें भी 5वीं बटालियन के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए। ये बात है, देखिए, 1940 के आसपास की, राइट। उसमें भी बेस्ट कैडेट चुने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो चार गेम खेल रहे हैं, उसमें अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब वो बकायदे यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग कोर में शामिल हुए तो वे वहां भी अपने बटालियन के बेस्ट कैडेट चुने गए। तो फ्रेंड्स, उनके पिता का निधन हो गया। अब उन्हें कुछ ना कुछ करना था। वर्गीस साहब चाहते थे कि वे फौज में जाएं और आप देखें कि बटालियन के वो बेस्ट कैडेट चुन लिए गए हैं। उनकी इच्छा थी कि वे आर्मी में जाएं, लेकिन उनकी मां नहीं चाहती थी कि आर्मी में जाएं। तो चलिए, किसी के सिफारिश से, जो उनके फैमिली मेंबर्स ही थे, उनको जो जमशेदपुर में टाटा की कंपनी है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वहां नौकरी मिल गई। अब आप देखिए कि वे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसी समय उन्हें पता लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है, उस समय भारत पर ब्रिटिश सरकार का ही आधिपत्य था। आप जानते हैं हम किस समय की बात कर रहे हैं, 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि यहां से 500 लोगों का चयन करके, मतलब 500 इंडियंस को सेलेक्ट करके और फॉरेन में एजुकेशन के लिए भेजा जाए बकायदे स्कॉलरशिप पर। उस स्कॉलरशिप के लिए वर्गीज साहब ने एप्लीकेशन दे दी। अब आप देखिए कि वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं और इंटरव्यू बोर्ड में पहला प्रश्न पूछा जाता है, पाश्चराइजेशन क्या है, पाश्चराइजेशन क्या है। अब वर्गीस साहब को पाश्चराइजेशन के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदाजा लगा करके बताया कि मैं इसके बारे में जानता तो नहीं हूं, लेकिन शायद कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए जो दूध होता है उसे जीवाणु विहीन किया जा सकता है, उसी से जुड़ी हुई कोई यह एक प्रक्रिया है, ये उन्होंने बता दिया। अब आप देखिए कि यहां हुआ क्या कि वर्गीस साहब ने इसके बारे में कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन शब्द के आधार पर यह बता दिया कि यह दूध को जीवाणु विहीन करने से जुड़ी हुई कोई प्रक्रिया है। तो डेफिनेटली मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूं कि शायद ऐसा लगा हो कि जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट कर लिए गए हो और तुमको डेयरी इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, डेयरी इंजीनियरिंग यानी कि दुग्ध इंजीनियरिंग के लिए, दुग्ध उत्पाद। इस पर देखिए कि वर्गीस साहब क्या कहते हैं। वर्गीस साहब ने कहा कि नहीं, मुझे या तो धातु विज्ञान पढ़ना या परमाणु भौतिक शास्त्र पढ़ना है, मुझे डेयरी इंजीनियरिंग पढ़ना ही नहीं है। मेरी चॉइस में डेयरी इंजीनियरिंग है ही नहीं, या तो मैं धातु विज्ञान पढ़ूंगा या परमाणु भौतिक शास्त्र पढ़ूंगा। कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि देखो, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो वह तो डेयरी इंजीनियरिंग के लिए मिलेगी या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम सोच लो, तुम डिसाइड कर लो। दोस्तों, बात खत्म हो गई। अब वर्गीस साहब ने क्या निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद क्या किया, यह सब हम हमारे सामने मौजूद है। तो दोस्तों, अब फिर वर्गीस साहब ने क्या निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद क्या क्या किया, आज वह सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अमूल के रूप में हम सब उसे जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वो किस डेट को मनाया जाता है? इसकी बहुत कम चर्चा होती है। वह डेट है 26 नवंबर 2014 से शुरुआत की गई है, 26 नवंबर। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 26 नवंबर को ही वर्गीस साहब का जन्म हुआ था, यानी कि उनके जन्मदिन को भारत राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में हमारा देश मनाता है और उन्हें याद करता है, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करता है। फ्रेंड्स, यहां जो मैंने आपको एक जीवन यात्रा बताई है वर्गीस कुरियर साहब की, इसको आप कहानी मत समझिए, ये एक सच्ची घटना है, एक जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी है जो इन सच्चाइयों से होकर के गुजरी है। यह यथार्थ है, यहां कोई आदर्श नहीं है, यहां कोई उकसाने वाली बात नहीं है, यहां कोई नारेबाजी नहीं है, यहां कोई उपदेश नहीं है, नथिंग। यह एक जिंदगी की प्रत्यक्ष कहानी है और यह कोई 1000-2000 साल पहले की कहानी नहीं है कि उसमें कुछ मिलावट कर दी गई होगी, या यूं कह लीजिए कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूं यह वर्गीस कुरियर साहब के ऊपर बनी हुई कोई फिल्म नहीं है जिसमें कुछ मसाले डाल दिए गए हों, यह सच है। और इसमें अब आप जीवन को पकड़ने की कोशिश कीजिए और वर्गीस साहब के डिसीजन को देखिए कि क्या क्या वो चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ा, और जब उन्हें वो करना पड़ गया तो उसमें उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया। यानी कि उन्हें अपने मन के काम नहीं मिले, और लेकिन जब कुछ मिल गया तो फिर उसे ही उन्होंने अपने मन का काम बनाया। क्या आपको लगता है कि जो काम मिल गया है उसे जब तक हम अपने मन का काम नहीं बनाते, तब तक क्या सच में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं जो कुरियन साहब ने हासिल की है? यह विचार करने की बात है। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इस पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।